ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। अभी यहाँ आए हैं तो सभी को ये कहना है, ठीक है? वो आपको याद दिलाएगा कि हम कौन है। हम कौन है, सीखा ना आज? हम कौन है? हम एक आत्मा है, और आत्मा कैसे है? शांत स्वरूप, ठीक है? ओम शांति। आबू की धरती पर सजा है ये प्यारा ईश्वरीय गरीबा, ये ईश्वर का परिवार आपका है अपना परिवार। अपने घर में अपनों का अपनों द्वारा सत्कार, आप सभी का स्वागत है बारंबार, अभिनंदन है बारंबार। अपने लिए करतल धरे से अपना स्वागत कीजिए। आज के इस सभा में हम सर्वप्रथम सुप्रीम जस्टिस परम पिता श्री परमात्मा का इस सत्र में आवाहन करते हैं, और इस उद्घाटन सत्र में सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का विषय है वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ, मूल्य आधारित न्याय कानून की आत्मा। ज्ञान सरोवर आबूराज की इस पावन शांतिमय धरा पर आयोजित इस दिव्य संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ केवल कानून के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि एक जागरूक एवं सजग आत्माओं के रूप में एकत्रित हुए हैं। यह एक अत्यंत सुंदर और शाश्वत विषय पर हम यहाँ पर मनन करेंगे। बाहरी दृष्टि से कानून नियमों और प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था है, परंतु उसके अंतरतम में एक पवित्र विश्वास है मानवता और सत्य के सनातन सिद्धांत के बीच किया गया एक दिव्य संतुलन है। मूल्यों के बिना कानून केवल एक ढांचा है, वह ऊंचा तो खड़ा रह सकता है परंतु भीतर से रिक्त रहता है। मूल्य ही कानून को उसकी आत्मा प्रदान करते हैं। जब सत्य, निष्पक्षता, करुणा, ईमानदारी और विनम्रता कानून के हृदय में प्रवेश करते हैं, तब न्याय केवल कागज पर लिखा निर्णय नहीं रहता, परंतु वह एक जीवंत शक्ति बन जाता है जो जीवन को स्पर्श करता है और हृदयों को परिवर्तित करता है। जूरिस्ट विंग तथा ब्रह्मा कुमारी संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और सभी को स्मरण कराते हैं कि जब कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण मन और आंतरिक शांति से स्थिर हृदय रखकर न्यायालय में निर्णय देता है, तो केवल वह निर्णय देने का स्थान नहीं रहता है, लेकिन वह धर्म का एक पवित्र मंदिर बन जाता है। इन्हीं आत्मिक शुभ भावनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी का इस दिव्य ज्ञान मूल्य और न्याय के पावन सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी मैं मंच पर आज के अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया जी, हम सभी अपने गेस्ट का स्वागत करेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी के नायक जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी जी, परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, आप आए और स्थान ग्रहण करें मंच पर। परम आदरणीय राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी, जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन और आज के इस सेशन के भी चेयरपर्सन आदरणीय पुष्पा दीदी जी, आप आए स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर रश्मि ओझा जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, राज्यगिनी बीके लता दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, ब्रदर राजविंग सिंह वर्मा जी, Brother Pitambar Acharya Ji, Honorable Advocate General for Government of Odisha. Bhrata Ghanshyam Yadav Ji, Judge Consumer Court, Jalor. Sister B.K. Rohini Basapuri, Principal Civil Judge, Bailhongal, Karnataka. Bhrata R.K. Rathi Ji, Advocate and Executive Member, Jurist Wing. आप सभी का मंच पर स्वागत है. आप अभी स्थान ग्रहण करेंगे. कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो परमात्मा की स्मृति में अगर करते हैं तो हम जिस उद्देश्य से वो कार्य करते हैं, जिस लक्ष्य से वो कार्य करते हैं, वो लक्ष्य हमारा सफल होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है. और इसी के लिए हम सभी भी आध्यात्मिक प्रेमी लोग हैं, जिनसे परमात्मा से प्रेम है, जिनको ये सभी एकत्रित हुए हैं कुछ अच्छी शिक्षाएं धारण करने के लिए, तो हमारा भी ये उद्देश्य पूर्ण हो, इसलिए हम सर्वप्रथम परमात्मा की स्मृति में 2 मिनट बैठते हैं. ओम शांति.
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा.
परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा.
अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले.
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा.
अवतरित होकर
ओम शांति. गुलशन में बहार तो आती ही रहती है, विद्वान उससे महफिल कभी कभी सजती है. आज कानून के दिग्गजों से ये आंगन निहाल है. आप सबका यहाँ आना हमारे लिए मिसाल है, हमारे लिए मिसाल है. अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथियों का तिलक, अंगवस्त्रम, बैजेस एवं प्लांट से स्वागत करते हैं. हम सभी भी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे. ऑनरेबल जस्टिस गुरपाल सिंह अहलुवालिया जी, राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी, भ्राता यादव जी, डॉक्टर रश्मि ओझा जी, आदरणीय पुष्पा दीदी जी, आदरणीय लता दीदी जी, बहने बेहद प्रेम से सबका स्वागत कर रहे हैं. हम भी अपना तालियों के द्वारा सहयोग देंगे. स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी डॉक्टर मानसी राणा. आप पिछले 10 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में से जुड़ी हुई हैं और रेगुलर रूप से आप स्टूडेंट हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, और आप कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर मानसी राणा.
मानसी
खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर,
खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर,
ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर,
तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर,
देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
खातिर हमारे दूर से। आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम,
हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम,
लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना,
उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना,
आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानसी राणा, बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति की आपने, और आप खास इस प्रोग्राम के लिए दिल्ली से आए हैं, अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भी समय निकाल कर आए कि बाबा के घर की सेवा करनी है, आपका पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ मधुर वाणी ग्रुप को, आप आएंगे और आज का जो विषय है वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ, इस पर थीम सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। मधुर वाणी ग्रुप को आपने कल भी सुना, आप सभी का उन्होंने वेलकम किया। हमारे सतीश भाई जी इस गीत को लिखते हैं और आज इनके साथ में हैं भ्राता नितिन भाई, भ्राता गोविंद भाई और बितिंदर भाई, तो ये टीम है इनकी और समय पर गीत तैयार भी करते हैं, म्यूजिक भी देते हैं उसको और हर समय गीत गाते हैं, हमारे यहाँ रोज प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारे आदरणीय सतीश भाई जी ने अभी तक 3000 से भी अधिक सॉन्ग्स लिखे हैं। हम स्वागत करते हैं मधुरवाणी ग्रुप का, हृदय के द्वार खोलकर हम आपका करते हैं वंदन, हृदय के द्वार खोलकर हम आपका करते हैं वंदन, आपके आने से महक उठा है ये आंगन, शब्दों की माला पिरोकर भावों का अर्पण करते हैं मधुरवाणी ग्रुप, हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस थीम सॉन्ग के बोल है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही होना है सबका उत्थान, मूल्य आधारित न्याय से करना नवयुग का निर्माण। मधुरवाणी ग्रुप।
ओम शांति, एक बार साथ में समवेत स्वर में कहें ओम शांति। आपका हुआ यहां है शुभागमन, धन्य हो गई धरा, गा रहा गगन, खिल उठे चमन चमन, विहंस पड़े सुमन, आपका हुआ यहाँ है शुभागमन। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना हम सबका अभिनंदन करें। तालियों के साथ।
अध्यात्म सशक्तिकरण से अध्यात्म सशक्तिकरण से ही होना सबका उत्थान है। मूल्य आधारित न्याय से करना नवयुग निर्माण है। न्यायकारी प्रभु कर रहा न्यायकारी प्रभु कर रहा आपका आह्वान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। मूल्य आधारित न्याय ही कानून की है आत्मा। मूल्य आधारित न्याय ही कानून की है आत्मा। मूल्य निष्ठ समाज की प्रभु कर रहे हैं स्थापना। मूल्यों से वो बना रहा है
पापा।
मूल्यों से वो बना रहा है जीवन मूल्यवान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। मूल्य आधारित न्याय में न्यायपालिका रंग जाए। मूल्य आधारित न्याय में न्यायपालिका रंग जाए। सच कहते हैं समाज की सुंदर सूरत बन जाए। स्वप्न वही साकार कर रहा
बाबा।
स्वप्न वही साकार कर रहा फिर से शिव भगवान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है।
और इस ज्ञान सरोवर में वही ज्ञान की धारा बह रही है, हमारे स्वप्न साकार कर रहे हैं।
La 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 सकारात्मक परिवर्तन से विश्व बदलने वाले हैं। कतनी करनी एक हम करके दिखलाने वाले हैं। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों में आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों में सबका ही कल्याण है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। न्यायकारी प्रभु कर रहा आपका आह्वान है। न्यायकारी प्रभु कर रहा आपका आह्वान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है सम्मान है।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। ये हमारे चारों ही भाई समर्पित है, तो यहाँ के भाई बहनों की ये भी विशेषता है कि वो समर्पित रूप में जिस भी डिपार्टमेंट में सेवाएं करते हैं वो तो करते ही है, उसके अलावा भी कई अपनी अन्य जो विशेषताएं होती है वो भी अपनी सेवाओं में लगाते हैं। इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आप सभी का स्वागत कर शब्दों सुमन द्वारा स्वागत करने के लिए। उससे पूर्व हमारे सुदेश दीदी जी हमारे बीच में आ गए हैं, तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय सुदेश दीदी जी का तिलक अंगवस्त्रम बैज और प्लांट से स्वागत करेंगे। हम सभी कर्तव्य ध्वनि से सुदेश दीदी जी का स्वागत करेंगे। सुदेश दीदी जी इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं। आप अभी तक विदेश में ही थे और पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर के रूप में सेवाएं कर रहे हैं। हम इनके बारे में सुनेंगे ही आगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी को आप सभी का शब्द सुमन द्वारा स्वागत करेंगे। उससे पूर्व में मैं संक्षिप्त में आपका थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। जस्टिस राठी जी आपने अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से LLB किया है और उसके पश्चात 1978 में आपने लेक्स मैवन लॉ फर्म इंदौर में स्थापित की है। प्रारंभिक वर्षों में आप एक सफल अधिवक्ता रहे हैं और उसके पश्चात 1979 में आपका मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में न्यायमूर्ति न्यायाधीश के रूप में आपका चयन हुआ। आपकी उच्च कोटि की न्यायिक क्षमता निष्पक्षता तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का आपने वहां परिचय दिया और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया। इस न्यायिक कार्यकाल के दौरान ही उनके योगदान के हेतु उन्हें विभिन्न सम्मान एवं विशेष न्यायिक दायित्व भी सौंपे गए। सेवानिवृत्ति के पश्चात आपकी विशिष्ट विधिक योग्यता और अनुभव को मान्यता देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपको वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट किया गया और इस भूमिका को निभाते हुए आपने अनेक जटिल संवैधानिक और विधिक मामलों में परामर्श दिया है। वर्तमान में आप लेक्स मैवन लॉ फर्म के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, जहां आपके मार्गदर्शन में 30 से भी अधिक अधिवक्ता कार्यरत हैं। आप युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने की विशेष रुचि रखते हैं। माननीय न्यायमूर्ति राठी जी 1980 से ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और रेगुलर रूप से राज्यों का अभ्यास करते हैं। विधि एवं अध्यात्म के संतुलन को देखते हुए आपको ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के जूरिस्ट विंग का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जहां आप निरंतर निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तथा आप इस संस्था के चीफ लीगल एडवाइजर भी हैं। इसके अतिरिक्त आप ज्योतिष विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र में भी गहरी रुचि रखते हैं, जिसके लिए आपको 1990 में ज्योतिष श्री का सम्मान प्राप्त हुआ है। आप प्रख्यात दृष्टा एवं प्रेरक वक्ता के रूप में विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक एवं धार्मिक मंचों पर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आमंत्रित किए जाते हैं। तो दो शब्द मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, न्याय की राह दिखाते सत्य का दीप जलाते हैं। न्याय की राह दिखाते सत्य का दीप जलाते हैं, संस्कारों की खुशबू से जीवन महकाते हैं, संस्कारों की खुशबू से जीवन को महकाते हैं। तो कर्तव्य से हम आपका स्वागत करेंगे। और मैं आपकी एक विशेषता कहना चाहूंगी, आप बहुत ही सिंपल है, बहुत सभी से मिलनसार है। आप कभी भी इनसे बात करेंगे तो आपको ये अनुभूति नहीं होगी कि आप हाईकोर्ट के जजेस रह चुके हैं या जब रहते थे तभी भी ऐसे नहीं थे। बहुत मिलनसार है और कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए तो इमीडिएट आपको देंगे। तो हम लोगों को तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके साथ कार्य करने का, तो हम बहुत आभारी हैं आपके। फिर से अनुरोध करती हूँ जस्टिस राठी जी को आप आज का वेलकम स्पीच प्रस्तुत करें।
थैंक यू श्रद्धा बहन। ओम शांति। अलमाइटी परमात्मा जो सबका, हम सबका मीठा प्यारा बाबा है, उनकी इस महासभा में विराजमान आप सभी आदमी जनों का हृदय की गहराइयों से मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। देश के कोने कोने से न्यायाधीशगण, विद्वान अधिवक्तागण यहां पधारे हैं, बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। मैं समझता हूं कि परमात्मा की बहुत विशेष कृपा बरस रही है आप पर, जो आज के परिवेश में विश्व का जो दृश्य है उसमें से आप चुनिंदा आत्माएं हैं जो विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन के प्रति चिंतित हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए आप चिंतित है, यह दर्शाता है कि आप जैसा महान भाग्यशाली और कोई भी नहीं हो सकता। मंच पर आसीन, आज के मंच के श्रृंगार परम श्रद्धे ऑनरेबल जस्टिस श्री अहलूवालिया साहब, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच से पधार रहे हैं। आपका न केवल मध्य प्रदेश में पर देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत नाम है। कई हाईकोर्ट्स में आपने पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, कई लॉ जर्नल्स के आप संपादक रहे, वक्फ बोर्ड जैसे, वक्फ कानून जैसे और बहुत अन्य ज्वलंत समस्याओं पर आपने निर्णय दिए और अपना उद्बोधन भी रखा। उनका मैं हृदय से बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कॉन्फ्रेंस को सफलता की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपका बहुत अभिनंदन है। हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस बी के नायक साहब हाईकोर्ट उड़ीसा से पधारे, ब्रदर राजवीर सिंह जी वर्मा जुडिशियल मेंबर प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली सीए, ब्रदर पीताम्बरा जी आचार्य ऑनरेबल एडवोकेट जनरल फॉर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, राजयोगिनी बी के लता अग्रवाल जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारी जुडिस विंग की, और सच मानिए उनकी मेहनत और उनकी लगन के कारण कार्यक्रम में सफलता प्राप्त होती है। ऑनरेबल बी के पुष्पा बहन न्यू दिल्ली से पधारी और हमारी जुडिस विंग की चेयरपर्सन है, भाई ब्रदर आर के राठी जी जो सीनियर एडवोकेट हैं जोधपुर हाईकोर्ट के, उनका भी बहुत दिल से स्वागत। श्रद्धा बहन जो मंच का संचालन कर रही हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर बी के रश्मि ओझा जी मुंबई से, बहुत अच्छी कुशल वक्ता और उतनी अच्छी प्रशासनिक क्षमता रखने वाली प्रोफेसर, आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत। और जिनकी अनुशंसा से, जिनके मार्गदर्शन से इतनी सुंदर ज्ञान सरोवर की व्यवस्थाएं चलती है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था इंटरनेशनल लेवल की, जिसके लिए कुछ कहना आवश्यक नहीं है, उसकी जॉइंट चीफ स्वदेश बहन, बहुत करतल ध्वनि से आपका स्वागत है। विभिन्न देशों में आपने बाबा की जो सेवाएं की है, कमाल है। बहुत उच्च कोटि की वक्ता और बहुत योगी आत्मा, जिनके चेहरे से यदि आप उनके पास दो मिनट खड़े हो जाओ तो आपको वाइब्रेशंस आने लगेंगे कि बहुत महान आत्मा है। हमारे बीच राजस्थान से पधारे हुए भाई यादव जी, जो कंज्यूमर कोर्ट में है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और सभी विशेष आत्माओं का, दूर दूर से जो पधारे और जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उन सबका भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए, शुक्रिया व्यक्त करते हुए स्वागत। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, आज हम ऑफिशियल इस विषय पर, वैल्यू बेस्ड जस्टिस इज द सोल ऑफ लॉ, इसका इनॉग्रल सेशन करेंगे और वो प्रारंभ हो रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, 25 अक्टूबर 2025 में ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस ORC गुरुग्राम न्यू दिल्ली में थी, और वहां यह संकल्प लिया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग थे, हाई कोर्ट से आए थे, वरिष्ठ अधिवक्तागण थे, कि हम पूरे नेशन वाइड एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाएं, और ये उसका सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट चयन करने में ORC की इंचार्ज और हमारी ब्रह्मा कुमारी की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर ब्रह्मा कुमारी आशा बहन बहुत सीनियर हैं, और यशु बहन जो यहाँ बैठी हैं आगे, उनका बहुत योगदान रहा इस सब्जेक्ट के चयन में। और जब बाद में कई कॉन्फ्रेंसेस हुई पूरे इंडिया में, तो लोगों ने अप्रिशिएट करा कि कमाल का सब्जेक्ट चुना आपने, तो मैं आशा बहन और यशु बहन को भी खास स्वागत करता हूं। आज का विषय में एक बात, ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद हम जस्टिस का अर्थ समझते हैं कि जो न्यायालय से निर्णय आए उसी में हम जस्टिस को खोजते हैं कि जस्टिस हुआ या नहीं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था जुरिस्ट विंग विश्व बिंदुत्व की भावना से कार्य करती है, और हमारे विचारों में बहुत वाइड मीनिंग है जस्टिस शब्द का। जहां कोर्ट्स जजमेंट्स देती है, वहां भी जस्टिस उसमें समाहित है। हम मनुष्य आत्माएं डे टू डे लाइफ में कई बार डिसीजंस लेती हैं, शादी करना है नहीं करना, मकान बनाना नहीं बनाना, कोई सेलिब्रेशन करना नहीं करना, किसी को बुलाना नहीं बुलाना, ऐसे डिसीजंस में भी जस्टिस और इनजस्टिस हो जाता है। इतना ही नहीं, और वाइड सेंस में बात करें यदि जस्टिस की, तो आप देखिए हम डे टू डे लाइफ में जो डू एंड डोंट्स करते हैं, वहां भी हम जस्टिस और इनजस्टिस को देखते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि शरीर को क्या देना चाहिए या क्या नहीं, फिर भी विडंबना है, ये जानते हुए कि शराब खराब चीज है फिर भी उसका सेवन करते हैं, टोबैको, स्मोकिंग और भी कई चीज, जाने अनजाने अपमान, अनावश्यक वार्तालाप, इन डू एंड डोंट्स में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जस्टिस या इनजस्टिस छिपा हुआ होता है। तो हम विश्व बंधुत्व की भावना से इस सब्जेक्ट को उसी तरीके से लेकर आए हैं। यह भी प्रश्न उठता है कि यदि यही सब बातें हैं तो फिर लॉज की क्या बात होगी, सोल ऑफ लॉ कैसे होगा। मेरा निवेदन कि न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, स्टेचुरीज लॉज, पर ह्यूमन लॉज भी है, सोशल लॉज भी है। इन सब कानून के तहत रहकर ह्यूमन वैल्यूज के साथ जब हम कोई भी कार्य करते हैं तब उसमें 100% जस्टिस होता है। अदरवाइज यदि कानून आत्मा है, शरीर है, तो फिर इनजस्टिस आत्मा हो ही नहीं सकती। जस्टिस वैल्यू बेस्ड होगा तभी वो ये आत्मा होगी। कानून के कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से देखें ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, कार्डियल रिलेशनशिप, ऐसी कई बातें कि आज क्वेश्चन मार्क है। मैं कुछ कहना कि ये क्वेश्चन मार्क सही है या गलत है, पर हैं तो क्यों हैं? हम दूसरे क्षेत्र में भी देखें तो आप देखिए जीवन में कितना विरोधाभास हो गया है। जहां एक तरफ हम फादर्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे पर मदर्स डे मनाते हैं, और दूसरी तरफ वारे मनुष्य क्या विडंबना है, हम वृद्धाश्रम भी खोलते हैं, हम नशा मुक्ति की बात करते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मानव कल्याण की भावना से आध्यात्मिक बात करने जा रहा हूं और आपके लिए चिंतन का विषय छोड़ रहा हूं कि हम जहां नशा मुक्ति की बात करते हैं वहीं हम गली गली शराब की दुकानें खोलकर लाइसेंस बांटते हैं। ये सब करने से कैसे होगा? आज सोशल मीडिया पर कितना हर प्रकार की क्रिटिसाइज होती है, चाहे वो जजमेंट्स को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, सोशल लाइफ को लेकर हो। और ये एक बड़ा कंसेप्ट इसलिए लेकर आए हम कि भारतवर्ष का संविधान न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और हर प्रकार का आर्थिक राजनीतिक हर प्रकार का न्याय भारत की जनता को मिले इस बात की गारंटी करता है। उसमें सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जुडिशियल लाइफ और हर क्षेत्र समाहित है। आपने देखा होगा कि जितने कार्य होते हैं वो सब मनुष्य की विचारधारा पर आधारित होते हैं। यदि हमारी विचारधारा नकारात्मक है तो हमारी हर एक्शन में नकारात्मकता होगी और वैल्यू लेस होगी। सकारात्मक है, हमारी हर एक्शन पॉजिटिव होगी, वैल्यू बेस्ड होगी। अब प्रश्न उठता है कि ये विचारधाराओं में जो अंतर हो गया ये कैसे सुधारा जाए? मेरा मत है और मेरा अपना 50 वर्षों का अनुभव है कि अध्यात्म ही केवल एकमात्र मार्ग है, मेडिटेशन ही है, जिससे हम विचारधाराओं में परिवर्तन करके नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं, वैल्यू लेस से वैल्यू बेस्ट बन सकते हैं। और ये अपनाएंगे तो ही सब कुछ ठीक होगा। और खुशी की बात, अधिक समय नहीं लूंगा, हमारे बीच बहुत श्रेष्ठ जन और विद्वान वक्तागण बैठे हैं, हम उनके विचार सुनेंगे। मैं तो सिर्फ एक वानगी पेश कर रहा था आपके सामने कि इस विषय पर हम सबको चिंतन करना है और अतिथियों को सुनना है। तो मेरा मानना है और आप तक एक खुशखबरी पहुंचाऊं कि 1937 में श्रीमद् भगवद गीता के वायदे के अनुसार परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है और हमारे मीठे प्यारे बाबा जो निराकार हैं वही वो विधा सिखाते हैं कि कैसे मनुष्य आत्मा सकारात्मक चिंतन करके वैल्यू बेस्ड कार्य कर सकती है, न केवल जजमेंट पर जीवन के हर फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकती है। आप सबका मैं बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करता हूं पुनः, और मंच का विशेष रूप से, और साथ ही पुनः आज निवेदन करूंगा कि कोई भी सेशन आप मिस ना करिएगा। प्लीज आए हैं तो एक एक क्षण उसका लाभ उठाइए। और विशेष बात कि सारी संस्था का संचालन हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें करती हैं, वैसे तो सभी, बाकी विशेष रूप से पवित्र आत्माएं इनकी दिनचर्या देखिए 3:30 बजे। ऐसा भी नहीं कि कोई इलिटरेट है, पीएचडी, डॉक्टरेट, एमए, एमएससी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंप्यूटर साइंस, सब में एक्सपर्ट। और ऐसी बहनों ने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के कल्याण का ये जो बिगड़ा उठाया है, मैं हृदय से अनुमान करता हूँ ब्रह्मा कुमारी इसको, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार हमारी इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सबका पुनः स्वागत, थैंक यू वेरी मच।
करने के लिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत से स्वागत है। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि आज का ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस है उसके क्या एम्स है और ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में बताने के लिए डॉक्टर बीके रश्मि ओझा जी, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग से हैं, आप मुंबई से हैं, आपके बारे में मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आप ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लीगल डिपार्टमेंट जो उसमें स्थापित चीफ जस्टिस एमसी चागला चेयर की चेयर प्रोफेसर है। आपको जुलाई 1998 में स्ट्रासबर्ग फ्रांस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला, जहां आपने मानवाधिकार में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी पूरा किया। सितंबर 2002 में लुंड स्वीडन में आयोजित एडवांस इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आप भारत से चुनी गई एकमात्र व्यक्ति रही है, प्रतिभागी थी। आपको आपने यूनाइटेड नेशंस के समिति सदस्यों के सामने भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक शोध प्रबंध पत्र प्रस्तुत किया। डॉक्टर ओझा, आप एक पंजीकृत एनजीओ ह्यूमन राइट्स एक्शन ग्रुप इंडिया की अध्यक्षा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मई 2012 में इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी न्यू दिल्ली द्वारा आपको शिक्षा रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हुआ है। और आपके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, आप विनम्रता की मूर्ति है, आप विनम्रता की मूर्ति है, ज्ञान योग और संस्कारों की सुंदर पहच है। आप अपनी मधुर वाणी से हर दिल में शांति का दीप जलाती है। आदरणीय डॉक्टर रश्मि ओझा जी, आप इस कॉन्फ्रेंस के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे।
ओम शांति। सुप्रीम जस्टिस शिव बाबा, ऑल द एस्टीम डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, sisters and brothers, om shanti, namaskar and a very good morning to one and all. Aaj 29 May 2026 hai, and 29th May 2000, every year 29th May is marked as by the United Nations as the International Day of Peacekeepers. To honor the service and sacrifice of peace keepers across the globe, worldwide. 29th May is also marked as the Everest Day. It is to honor a historic 1903 ascent of Edmund Hillary and Tenzing Norgay Thapa, jinhone Mount Everest pe successfully achievement ki thi climb karke. So it's a very significant day when we have the jurist wing inaugural session. Is jurist wing ki conference ka theme hai view based justice, the soul of law. To kya iska matlab ye hai ki hamara system value based nahi hai? System is not value based, it is supposed to be value based. Aur mere dhyan mein ek satya ghatna aa rahi hai jo aapke samne rakh rahi hu. It's a true story. बहुत साल एक इंडियन वकील ब्रिटिश जज के सामने के आर्ग्यू कर रहे थे और वे उन 46 फ्रीडम फाइटर्स के लिए केस आर्ग्यू कर रहे थे जिनको फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, और काफी देर तक उनकी आर्ग्यूमेंट चली। बीच में से एक इंसान आया और उसने उसके हाथ में एक चिट थमा दी, विच वॉज अ फोल्डेड स्लिप। सो द एडवोकेट पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, उन्होंने वो चिट खोली, उन्होंने वो चिट पढ़ी और वापस फोल्ड करके नीचे रख दी और अपनी आर्ग्यूमेंट्स चालू कर दी. ही केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग. व्हेन ही कंप्लीटेड हिज आर्ग्यूमेंट द जज आस्क्ड हिम, प्लीज टेल मी व्हाट वाज रिटन इन दैट चिट. सो द एडवोकेट टेल्स हिम, और कुछ नहीं, वो खबर आई कि मेरी पत्नी मर चुकी है और उन्होंने शरीर छोड़ा है. तो जज वॉज शॉक्ड, द ब्रिटिश जज वॉज शॉक्ड, और उन्होंने उनसे कहा कि इतनी बुरी खबर सुन के भी आप बिल्कुल न्यूट्रल रहे और आपने आर्ग्यूमेंट जारी कर दी थी. तो उस वकील ने कहा कि ये खबर पहुंची, ये सही बात है, लेकिन मैं चाहकर भी मेरी मरी हुई पत्नी को वापस नहीं ला सकता. अगर आज मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो ये जो 46 इनोसेंट फ्रीडम फाइटर्स है उनको फांसी की सजा हो जाती थी, कंफर्म हो जाती थी. तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उनके लिए अपनी आर्ग्यूमेंट्स खत्म करूं. एंड सिग्निफिकेंटली ऑल द 46 फ्रीडम फाइटर्स वेर एक्विटेड, सभी की फांसी की सजा हट गई थी. और वो लॉयर और कोई नहीं था, ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. सो अ मोस्ट एप्ट एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू बेस्ड जस्टिस. देखिए, हमारे इमोशंस, हमें कुछ न्यूज मिलती है, हमें कुछ खबर मिलती है, फिर भी वॉट इज आर बेस्ड ड्यूटी एट द टाइम ऑफ फाइटिंग आउट ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. अ मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल. कल से रिसेप्शन सेशन से मैं कई सारे वक्ताओं को सुनती आ रही हूँ. एंड वेरी एप्टली इट वॉज सेड कि आपको शायद मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इन आर कंट्री इन इंडिया 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है आज इन डिफरेंट कोर्ट्स इन इंडिया. अ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 5 करोड़, उससे भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है भारत की हर एक कोर्ट में. और जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वी रीड, टेलीविजन की न्यूज चैनल्स देखते हैं, वी हियर अबाउट द ट्रॉमा ऑफ वॉर, रिप्रेसिव रेजिम, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिलीजियस राइवलरीज होती है. और 15 अगस्त को, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, भारत का स्वतंत्रता दिन मनाते हैं 15 अगस्त को. इट्स मोर देन 7 decades ऑफ भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोर देन 7 decades ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. सो वेर आर वी लीडिंग टू, वेर आर वी गोइंग, इज दिस अ ट्रू वैल्यू बेस्ड जस्टिस? आई थिंक वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट दिस एंड लुक इन टू इट. एक और सत्य घटना, किसी पत्रकार ने, अ रिपोर्टर वंस आस्क्ड अ सक्सेसफुल जज, सर व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? द जज रिप्लाइड, गुड डिसीजंस, अच्छे में न्याय देता हूं, अच्छे जजमेंट्स देता हूं. तो रिपोर्टर ने दूसरा प्रश्न पूछा, सर व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर गुड डिसीजंस? तो जज ने कहा, एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है इतने साल का, एंड देयरफॉर आई कैन गिव गुड जजमेंट्स. The reporter exasperated, sir, last question, what is the secret behind your experience? And the judge said, bad decisions. तो हम लगा सकते हैं अंदाजा कि out of our own experience, bad decisions, हम किस तरह से हम justice फिर भी समाज को दे सकते हैं. और इसके लिए मैं हमेशा जब अपने विचार लोगों के समक्ष रखती हूं तो आई कोट दिस इंस्टेंस. यस्टरडे देर वॉज अ रेफरेंस ऑफ जस्टिस पी एन भगवती जी, एंड इट वॉज जस्टिस पी एन भगवती जी हु कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2011 बिफोर हिज डिमाइज. एंड उन्होंने कहा कि 35 साल पहले मैंने जो इमरजेंसी केस में डिसीशन दिया था, 35 साल से मेरी आत्मा मुझे डंक रही है, कचोट रही है कि आई हैव गिवन अ रॉन्ग डिसीजन बाय सपोर्टिंग द मेजॉरिटी. आज इफ आई हैव टू रीराइट द जजमेंट, माय सपोर्ट वुड हैव बीन फॉर टू द सोल डिसेंटिंग जज, Justice H.R. Khanna. This is value-based justice, where one possesses guts to inform the public at large ki meri sabse badi galati tab thi jab maine majority ko side kiya tha, but it was a very wrong decision. Kal se main sunti aa rahi hu, a reference is made of late Justice V.R. Krishna Iyer ji. He was the very first patron of the jurist wing of the Brahma Kumaris. And he made, I remember the days when he used to come to Madhuban and address the jurist conference. He used to say that we are boasting of LPG, liberalization, privatization and globalization, but it must lead to humanization. So imagine that unless and until we go to the roots and we have that desire and passion and for justice to the people as such, I think this dream of value-based justice cannot be realized. So doing justice itself is a tribute to justice. Martin Luther King Jr. ne kaha tha, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. कहीं पर भी अगर अन्याय होता है तो एक थ्रेट है जस्टिस एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड. और थॉमस पेन ने इन द राइट्स ऑफ मैन कहा था कि क्यों ना हम अपने विचारों को इस तरह परिवर्तित करें, ट्रांसफॉर्म करें, वेयर वी थिंक दैट द होल वर्ल्ड इज माय कंट्री, ऑल मैनकाइंड आर माय ब्रदर्स एंड टू डू गुड इज माय रिलीजन. हम इस तीन दिन की कॉन्फ्रेंस जो जूरिस्ट विंग, it's one of the 25 wings of the Raj Roga Education and Research Foundation. It's doing a yeoman service, a very great service, by reaching out to people with the national campaign. Is saal ka theme raha hai value based justice, the soul of law, and trying to bring about a transformation in the thought process of jurists. So jurist is not only judges but advocates, students, the vice chancellors of the law university and all those who are associated with the legal profession and who are in the legal fraternity, the law fraternity as such. So be it so, as Justice Rathi sir rightly said, that in this 3-day session you will be hearing the expertise, hamare Raj Yoga senior teachers ko aap sunenge, unke values sunenge. And jab value based ki baat aati hai, why values are so important, I have just classified into 4 categories. It's personal values, it's moral or spiritual values, social values and behavioral values. किसी भी प्रकार से हम कोई भी एक वैल्यू को इम्बाइब करें, इनकलकेट करें, दैट विल रिफ्लेक्ट बाय वे ऑफ जस्टिस टू द सोसाइटी. Otherwise also legal curriculum mein bataya gaya hai, your degree should not be just confined to you, it should percolate in the form of communal based services as such. Aur is dauran 3 din ki conference mein you will be hearing various expertise, both on Raj Yoga, how it helps enhance your legal ability, your justice delivery system, and ensuring that true justice is delivered as such. So as Justice Rathi sir has said, make the maximum utility of each of the sessions which are being conducted here. I'm sure that will bring about a change when you take some carry home message as such. At the end, a proverb is very most apt. His books has stated that we need to eat the light in the soul. So here goes the Chinese proverb, where there is light in the soul, there's beauty in the person. Where there's beauty in the person, there's harmony in the home. Where there's harmony in the home, there's order in the nation. And where there is order in the nation, there is peace on this earth. So this is also a way by which aapko 3 din sikhaya jayega ki hum hamare soul ki qualities kaise ignite kare, and that surely percolates in the form of your personality and your process of, you know, giving justice to the people. Rest mera kal sham ko session hai at 5:30, usme thoda jyada samay hai, so I will definitely avail my liberty to pass on more thoughts on the topic. Thank you and Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय डॉक्टर रश्मि ओझा जी, आपने इस कार्य इस सेशन के या इस कॉन्फ्रेंस के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स बताए। अभी हम विधिवत रूप से इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे भाइयों को कि आप स्टेज पर कैंडल लाइटिंग के लिए आए, और इसमें और भी कैंडल्स यहाँ नीचे रखे जाएंगे। तो आप सब में से डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के कितने जजेस हैं? आप सभी थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, आप सभी से अनुरोध है नीचे जो कैंडल्स रहेंगे उसमें आप सभी आएंगे और कैंडल लाइटिंग में अपना सहयोग देंगे। और बीके जूरिस्ट विंग के जो भी बीके सदस्य हैं, आप सभी भी नीचे कैंडल लाइटिंग में अपना सहयोग देंगे। बीके जूरिस्ट भाई बहने सभी हाथ खड़ा करेंगे, एक मिनट, आप भी सभी नीचे कैंडल लाइटिंग के लिए आएंगे। और अभी हमारे मेहमान से अनुरोध है कैंडल लाइटिंग के लिए आगे आएंगे। और बाकी जो भी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपना मोबाइल का टॉर्च जलाएंगे और सभी के साथ कैंडल लाइटिंग में सहयोग देंगे। ठीक है, सभी समझ गए?
हाँ।
तो हम ये कैंडल लाइटिंग केवल कैंडल लाइटिंग नहीं है, लेकिन अपने मन का अंदर जो अंधकार है उसे मिटाने के लिए एक ज्ञान का दीप, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ये दीप हम जला रहे हैं।
मूल्यों पर आधारित न्याय से विश्व नया।
कुछ गेस्ट के नाम मैं अनाउंस कर रही, जो ऊपर आएंगे हमारे स्टेज पर आएंगे, मिसेस नायक, मिसेस आचार्य, नाथमल भाई जी, विद्या बहन जी, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर्स से जुरिस्ट विंग के, भ्राता सिवाल जी, भ्राता राजकुमार जी, डॉक्टर गीता, डॉक्टर ब्रिजेश सिंघल और अशोक भाई, आप सभी से अनुरोध है। लक्ष्मी बहन जी, आप भी स्टेज पर आएंगे कैंडल लाइटिंग के लिए। सभी ने सुने, स्टेज पर आएंगे मिसेस नायक, मिसेस आचार्य, नथमल भाई, विद्या बहन, लक्ष्मी बहन जी, भ्राता सिवाल जी, भ्राता राजकुमार, डॉक्टर गीता, डॉक्टर ब्रिजेश सिंघल, अशोक भाई।
जहाँ न्याय में मूल्य जुड़े वहाँ विश्वास पनपता है, हर निर्णय मानवता से जीवन सुंदर बनता है। रोज नहीं,
आज जिन भाई बहनों ने कैंडल लाइट में शामिल हुए हैं और कृपया स्टेज के पास आ जाए, एक ग्रुप फोटो होगा। जो भी भाई बहने अतिथियों ने कैंडल लाइट में शामिल हुए हो स्टेज के सामने आ जाइए।
सच्चा न्याय ही समाज बदल देता है। न्याय की ज्योति जलाए, मानवता का मान बढ़ाए, मूल्यों और संत प्यारों से स्वर्णिम विश्व बनाए, शांति सत्य और प्रेम से हर जीवन मुस्कुराए, मूल्य आधारित न्याय का सारे जग में जाए।
और पुनः हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी ने अपने अंदर ज्ञान के दीप जलाए हैं और हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया जी ने आज के इस सत्र का उद्घाटन किया है। अब मैं अनुरोध करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया जी से, आप आकर अपना मुख्य अतिथि का भाषण प्रस्तुत करेंगे। हम सभी कर्तव्य से सर का स्वागत करते हैं। मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। आपने 4 जुलाई 1988 में एज एन एडवोकेट के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का, मुंबई उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आदि कोर्ट्स में आपने एज अ जस्टिस कार्य किया है। वर्तमान समय आप ग्वालियर में हैं और आपके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। न्याय की मशाल लेकर जो सत्य की राह दिखाते हैं, न्याय की मशाल लेकर जो सत्य की राह दिखाते हैं, वो महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। हम सभी कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। मैं आपको एक मिनट बताना चाहूंगी कि कल रात को आपकी फ्लाइट बहुत लेट हुई थी तो आपको उदयपुर रुकना पड़ा, फिर भी आप समय के पाबंद हैं और समय पर आज उदयपुर से यहाँ पहुंच गए। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कृपाल सिंह अहलूवालिया जी।
ऑल रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डाइस ऑफ द डाइस, ऑल प्योर सोल्स हु आर प्रेजेंट in the auditorium and who will be watching this. इस अध्यात्म से भरी धरा पे अगर मैं अध्यात्म के बारे में कुछ बोलूं तो मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। जिस इंसान को अध्यात्म का अनुभव ना हो और वो अध्यात्म के बारे में कुछ बोले तो पूर्ण संभावना है कि वो गलत होगा या गलती हो सकती है। तो अध्यात्म संबंधी जो भी गलती हो उसे अनजान समझ के आप सब माफ करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। वैल्यू बेस्ड जस्टिस का टॉपिक जो है वो एक अलार्मिंग टॉपिक है, एक चिंतनीय टॉपिक है। इस चिंता को व्यक्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। आप जो भी इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरे प्रश्न का उत्तर पता हो तो कृपया दीजिएगा। हम लोग रोज दिन भर के दिनचर्या में न्याय जस्टिस इस शब्द का कई बार उल्लेख करते हैं, पर जस्टिस की परिभाषा क्या है? क्या किसी कानून की पुस्तक में या किसी अन्य लेखककारों के विचारों में अगर आपने जस्टिस की परिभाषा को एक वाक्य में या एक शब्द में पढ़ा हो या समझा हो तो आप सबसे निवेदन है कि इसके बारे में आप एक वाक्य या एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे। अभी तक कोई उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ जी, सही उत्तर आ गया है। वैसे सत्य, आज दिन के 11:42 हुए हैं, सत्य है। इसके बारे में अगर हम आपसे कहें कि चलिए संगोष्ठी करते हैं कि 11:42 हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो आप लोग हम पे हंसेंगे। जो दिख रहा है उसके बारे में क्या विचार करना, क्या तर्क वितर्क करना। मेरा मानना यह है कि जहां सत्य है, वैल्यूज इन बिल्ट हैं। अगर सत्य में वैल्यूज हटा दिए जाएं, तो वो असत्य हो जाएगा। परंतु आज जब हमें इस बात पे विचार करना पड़ रहा है कि वैल्यू बेस्ड जस्टिस, तो क्या हम उस तरफ नहीं जा रहे जहां पे शायद कुछ शंकाएं कुशंकाएं लोगों के मन में उत्पन्न हो रही हैं? प्रश्न ये है कि अगर उत्पन्न हो रही हैं, तो वो शंकाएं या कुशंकाएं कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं? इसका उत्तर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, मात्र एक जगह से मिलेगा, और वो है आध्यात्म। आज हम जो यहां बैठे हैं, जिस शरीर में वास करते हुए हम यहां बैठे हैं, वह स्थूल शरीर है। जब आपको आपके हाथ में मान लीजिए चोट लग जाए, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? मेरे हाथ में चोट लग गई। तो क्या ये बात सच नहीं है कि आप और आपका ये स्थूल शरीर दो अलग अलग चीजें हैं? एक और शरीर होता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में मन भी आता है, दिमाग भी आता है। मन भावना प्रधान होता है, वो नफा नुकसान नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि मैं फलाने से दोस्ती करूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा, या फलाने से दुश्मनी करूंगा तो कितना फायदा होगा। उसको जो अच्छा लगता है वो उसको प्रेम करने लगता है, उसका आदर करने लगता है, उसका सम्मान करने लग जाता है, चाहे उसको कोई फायदा हो चाहे उसको कोई नुकसान हो। ये शब्द मैंने बहन रश्मि ओझा जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए बोले हैं, मैं इन शब्दों पर दोबारा आऊंगा। परंतु दिमाग भावनाओं से काम नहीं करता। दिमाग नफा नुकसान देखता है, मैं ये करूंगा तो मुझे कितना नुकसान होगा और मुझे कितना फायदा होगा। परंतु वो भी आप नहीं है, ना तो सूक्ष्म शरीर आपका है, ना आपका स्थूल शरीर आपका है। जस्टिस शब्द जहां तक हम लोग जो डिस्पेंस कर रहे हैं या जो हम लोग निर्णय देते हैं वो स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के किए गए कर्मों के ऊपर देश के कानून के हिसाब से देते हैं, परंतु जो शाश्वत जो अमर है और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सहारे उस आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसका निर्णय वो सुप्रीम जस्टिस करता है। तो दो प्रकार के जस्टिस होते हैं, एक न्याय जो आप शारीरिक रूप से इस दुनिया में रहते हुए देश के कानून का उल्लंघन करने के कारण से जो गलती कर बैठते हैं वो एक दुनिया के बनाए गए कानून के हिसाब से निर्णय होता है, परंतु क्या ये संभव है कि कुछ उस परमपिता परमात्मा की निगाह में किया गया गलत कार्य जो कि इस नश्वर संसार की नजर से चूक गया, क्या आप उसमें डीम्ड एक्सोनरेट होते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है? जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, अध्यात्म का अनुभव नगण्य है, मैं नहीं कहूंगा कि जीरो है, नगण्य है। बचपन से यह सिखाया गया कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म मिलेगा। कितना सच है कितना सच नहीं है ये मैं आप सबके ऊपर, आप सबके विवेक के ऊपर, आप सबके आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर, आप सबके आध्यात्मिक अनुभव के ऊपर मैं छोड़ता हूं। परंतु कुछ ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने आ जाते हैं जो इस बात को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं कि कर्म होते हैं और उसका फल मिलता है, चाहे किसी भी रूप में मिले। मैं आपको एक अनुभव जो मैं जिसमें कि मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मैं बहुत ज्यादा आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मैं अधिवक्ता के रूप में था और एक अधिवक्ता की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने क्लाइंट की हर इंफॉर्मेशन को बिना उसकी रिटन परमिशन के उसको रिवील ना करे। तो वो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, उस शहर का नाम नहीं बताऊंगा, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को से एक प्रोफेशनल ड्यूटीज के कारण से मैं आप लोगों से छुपा के रखूंगा, परंतु आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इसके अलावा एक एक शब्द सही है क्योंकि मैं आई विटनेस हूं। मेरा एक क्लाइंट था जिसको कि मैं कह सकता हूं कि वो शायद पूरे देश के सबसे टॉप 10 सटोरियों में से एक वो भी था। अरबपति आदमी, सट्टा उसका बिजनेस, उसके खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हुए सट्टे के। हमारे रिटायर्ड जज साहब भी बैठे हैं, हमारे उड़ीसा के एडवोकेट जनरल साहब भी हैं, तो वो लीगल टर्मिनोलॉजी को बड़े इजीली समझ जाएंगे, परंतु मैं उसको थोड़ा सा आप सबके लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो लीगल फील्ड से नहीं है, पहले सीआरपीसी थी, आज बीएनएसएस है। सीआरपीसी में एक प्रोविजन था 482, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे हाई कोर्ट के, अगर कोई एफआईआर होती थी और उसका बिना ट्रायल के अगर कोई क्वेश्चमेंट चाहता था तो 482 में हाई कोर्ट में अप्रोच करना पड़ता था। उन 104 एफआईआर मैंने क्वेश करवाई, ताली बजाने की बात इसलिए है कि ये जो क्वेश्चमेंट है ये आपके इस विश्वास को मजबूत कर देगा कि कर्म और उसके फल होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सट्टा वो खेलता था, खिलवाता था, उसमें उसका ट्रायल तक नहीं हुआ, सजा पड़ने की तो बात ही दूर है। पर एक दिन वो उसी शहर में एक डबल मर्डर हुआ। मुझे मालूम था कि वो व्यक्ति उस डबल मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि एडवोकेट के रूप में आपका क्लाइंट्स, अगर वो फ्रीक्वेंटली आपके ऑफिस में आता है तो आपके क्लाइंट्स को, आपको क्लाइंट्स के कई मूवमेंट्स पता रहते हैं। बट एनी हाउ, दैट वॉज माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट दैट पर्सन वॉज नॉट इन्वॉल्व। परंतु उसको उस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि वो उस केस में मुख्य आरोपी बना जो अपराध उसने किया ही नहीं था। उसका ट्रायल हुआ, उसके साथ उन और लोगों का ट्रायल हुआ जिन्होंने एक्चुअली मर्डर किया था। क्योंकि पुलिस परेशान थी, अपराध सटोरिया तो था, समाज में उसके कारण से कई लोग अपने पूरी जीवन की जमा पूंजी गंवा चुके थे, कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया था, ऐसा मुझे बताया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं, बट एनी हाउ उस ट्रायल में मैं भी उसका वकील था। बदकिस्मती से जिन्होंने एक्चुअल मर्डर किया था सबका एक्विटल हो गया, उसका और उसका साथी का कन्विक्शन हुआ। हाई कोर्ट में अपील हुई और 2022 दिसंबर में एक्विटल हुआ उसका, 12 साल जेल में रहने के बाद। अब आप ये सोचिए कि वो आदमी 12 साल जेल में रहा उस अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं था, परंतु क्या उसका ये 12 साल जेल में रहना आपको इस पूरी पृष्ठभूमि के को ध्यान में रखते हुए अन्याय लगता है कि न्याय लगता है? जिस कर्म की सजा मिलनी चाहिए थी उसमें वो बच गया, और जो कर्म नहीं किया उसमें वो सजा मिली। परंतु वास्तविकता में मेरे हिसाब से उसको उन कर्मों की सजा मिली थी जो उसने किए थे, पर बच गया था, फंसा वो दूसरे मुकदमे में जो उसने कभी किया नहीं था। तो दुनिया के न्याय को अगर समझना है, उसमें वैल्यूज को समझना है, तो अध्यात्म को आगे रखना पड़ेगा। हमारे सामने कई बार बहस होती है, साहब ये तो आदमी था ही नहीं, ये तो आर्मी में था। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि वो मैंने एज ए जज डील किया, बेल एप्लीकेशन थी जो आर्ग्यू हुआ, मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जो आर्ग्यू किया मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं कि साहब ये तो आर्मी में था, छुट्टी पे आया था, गांव में एक मर्डर हो गया, चूंकि ये आर्मी में था इसकी नौकरी खानी थी लोगों ने, तो इसको मुख्य अभियुक्त बना दिया और इसको सर मुख्य आरोपी बन गया, ये जेल में है, इसको जमानत दे दी जाए। मजे की बात ये होती है कि अगर किसी आदमी को झूठा फंसाया जाता है तो मान के चलिएगा उसके खिलाफ गवाही बड़ी तगड़ी आती है, क्योंकि उसको सोच समझ के बनाया जाता है। मैंने हिस्ट्री देखी, उस आदमी की हिस्ट्री में ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी नहीं। आर्मी का एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय था, 4 साल से छुट्टी के लिए आवेदन लगा रहा था, छुट्टी उसको मिली नहीं थी, अचानक छुट्टी मिली, वो घर आया, 2 गुटों में झगड़ा हुआ जिसका कि उसके परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं, परंतु चूंकि कई बार लोग आउट ऑफ जेलस कि यार ये आर्मी में है, इसकी नौकरी, इसको फंसा दो तो इसकी नौकरी चली जाएगी, जैसा वकीलों ने भेज की मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, उसको फंसा दिया। चूंकि गवाहियां बिल्कुल सी साफ थी कि गोली उसी ने मारी है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही थी, अब जो भी सच्चाई हो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि अगर ये बहस सही है कि ये आदमी निर्दोष है तो ऐसा क्या था कि इसको 4 साल से छुट्टी मांग रहा था और अचानक उस समय छुट्टी मिली जब उसके गांव में मर्डर हो गया। ऐसा क्या था कि वो 2 दिन पहले ही पहुंचा और उसके बाद मर्डर हो गया। मर्डर तो कभी भी हो सकता था, पिछले 4 साल में हो सकता था जब वो ड्यूटी पे था। ऐसा क्या था कि कंप्लेनेंट के मन में ये घृणा थी कि ये परिवार का लड़का नौकरी कर रहा है इसलिए इसको फंसाना है। इसका आंसर कुछ भी हो, आंसर अध्यात्म मिलेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आप सबसे माफी मांगी थी कि अध्यात्म का अनुभव बहुत कम है, नगण्य मान लीजिए, इसलिए मेरे से गलती हो सकती है। आज जब हम कहते हैं कि ये गलत निर्णय हो गया है तो इस झंझावात से हम लोग रोज गुजरते हैं। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, एक जज की जो ड्यूटी होती है वो आई विटनेस नहीं होता, उसका सारा काम पेपर्स के ऊपर जो गवाही आई है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। भूसे में से गेहूं का दाना चुनने वाला, ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, मैंने उसको हिंदी में जानबूझ के अनुवाद करके बोला है, ये एक ड्यूटी होती है जज की। मैं आपसे ये एक चीज डंके की चोट पे कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूं कि जब हम खाली दिमाग से, अब खाली दिमाग शब्द को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, बिना लाग लपेट द्वेष के अगर हम किसी केस को देखते हैं तो एहसास होने लगता है कि सच्चाई क्या रही होगी। या उसको और सिंप्लीफाइड तरीके से कहें कि अगर आप जब धूप में निकलते हैं काले काला चश्मा पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, तो आपको सनलाइट बड़ी डिम लगती है, वो आंखों को थोड़ा सा सुकून देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने काले रंग का चश्मा पहन लिया तो आपको काफी कुछ ब्लैकिश सा दिखने लगता है। यही इसको मैं कहता हूं कि द्वेष लगाव ये सारी चीजें हैं, अगर इसको आप काला चश्मा समझ लीजिए तो काले चश्मे के बगैर जब हम फाइल को देखते हैं तो बहुत कुछ एहसास होने लगता है कि सच्चाई ये है। प्रॉब्लम इस बात का नहीं है कि हमें एहसास होने लगता है कि सच्चाई ये है, मुश्किल इस बात की है कि गवाहियां सारी खिलाफ हैं और उसका आप तोड़ नहीं निकाल पा रहे हो। एज ए जज हमारी एक ड्यूटी है कि इस देश के कानून के हिसाब से उस अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहते हुए ही निर्णय करना है। तो जब हमारा दिल कहता है कि आदमी ने ये अपराध नहीं किया परंतु हमारी कलम कहती है कि इसको दोषी ठहराने के अलावा हमारे पास चारा नहीं है, ये सारा प्रयास करते हुए भी कि ये अगर आदमी निर्दोष है तो इसको निर्दोष किया जाए, परंतु सारे कागज सारी गवाहियां ऐसी आई हैं कि उसके खिलाफ उन गवाहों को हम अनरिलायबल नहीं कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स। तो मन में एक थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। तो मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कई जजेस ने ये एक तकलीफ को शेयर किया, बोले सर इससे हम कैसे बाहर आए। कई बार हम लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती है कि आदमी निर्दोष है, पर हम ये तो नहीं लिख सकते कि साहब मेरी अंतरात्मा कहती है कि आदमी निर्दोष है इसलिए मैं इसको निर्दोष कहता हूं, मुझे तो वो निर्णय गवाहियों के ऊपर कागजों के ऊपर देना है, तो मेरी आत्मा कुछ और कहता है, मेरा कलम कुछ और कहता है। तो सर ऐसी झंझावात से कैसे बाहर आया जाए। तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूं, इसका आंसर आपको अध्यात्म मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिसके कि मैं खुद हिस्सा हूं, जिसमें मुझे उस आदमी का पूरा पृष्ठभूमि मालूम था, मुझे उस आदमी का ये मालूम था कि उसने वो अपराध नहीं किया पर वो 12 साल जेल में रहा। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जो भी लीगल फील्ड से हैं उनको उन्होंने सुना होगा, एंड आई वॉज टोल्ड दैट इट वॉज अ रियल स्टोरी। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे, उनके सामने एक मर्डर हो गया। पर जब वो चार्जशीट फाइल हुई उनके कोर्ट में, तो उन्होंने देखा कि अपराधी वो नहीं था जिसको उन्होंने खुद अपराध करते हुए देखा था। ट्रायल हुआ, सारी गवाहियां उनके खिलाफ आई, सेशंस जज साहब ने उसको गिल्टी होल्ड किया, और फिर उस आरोपी को चैम्बर के अंदर बुलाया और उससे कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने अपराध नहीं किया है, परंतु मेरी अब कुछ मजबूरियां हैं। तो वो मुस्कुरा के कहता, जज साहब आप परेशान मत होइए, मैंने एक मर्डर और किया था जिसमें मैं पकड़ा नहीं गया हूं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं ये मैंने नहीं किया, पर आप ये नहीं जानते कि मैंने किया है जिसमें पकड़ा ही नहीं गया। अब ये जिसने भी हमारे सीनियर्स ने ड्यूरिंग माय एडवोकेट डेज आई हैड हर्ड दिस स्टोरी व्हेन आई वाज एलिवेटेड, देन आई वाज टोल्ड बाय माय सीनियर्स दैट दिस इज द रियल इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन गुजरात। चलिए मैं इसको इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्लेम नहीं करता, फिर भी अब आप मेरी उस स्टोरी पे जाइए जिसमें मैं आपसे ऑथेंटिसिटी 100% क्लेम कर रहा हूं कि वो आदमी सटोरिया था, उसने लाखों या हजारों लोगों की जिंदगियों पैसों से उसने महरूम कर दी, परंतु उस सजा उस केस में सजा पाया जो उसने अपराध किया नहीं था। अब वैल्यू बेस्ड जस्टिस जहां तक देश के कानून के हिसाब से है, जैसे कि सबसे पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि जस्टिस होता क्या है, आंसर बिल्कुल सही आया, सत्य। एक जज का ये काम होता है कि वो जो भी गवाहियां उसके सामने आए हैं, जो भी पेपर उसके सामने आए हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, व्हाट एवर इट मे बी, ही हैज टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ इन इट। इट इज वेरी इजी टू डिलीवर अ जजमेंट कि ये इसने ये कहा, ये इसने ये कहा, ये लॉ है, हमने चार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, चार जजमेंट हाई कोर्ट के साइड कर दिए, एंड देन वी डिलीवर द जजमेंट, फाइन, नो डिफिकल्टी, इट इज वेरी इजी टू डू दैट, नो रिसर्च वर्क इज रिक्वायर्ड, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड अ जस्टिस। और वैल्यू बेस्ड जो है, अब वैल्यूज का क्या डेफिनेशन है, अब मैं जस्टिस के नजरिए से थोड़ा सा कहना चाहता हूं, आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज एक्सक्यूज मी, एंड इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज ट्राई टू करेक्ट मी ऑल्सो, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत कीमती है, ताकि आगे के जीवन में जो और जजमेंट्स करने हैं शायद हम उनसे और गवन हो सकें। हमें लगता है कि अगर जज वो काला चश्मा हटा दे, बिना लाग लपेट के, बिना लगाव के, बिना विद्वेष के अगर मुकदमे को देखने लग जाए, तो उसको सिक्स्थ सेंस में वो पता चलने लग जाता है कि सच्चाई क्या है। और ये सिक्स्थ सेंस की बात मैं आपसे डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 साल की जजशिप में मैंने एक बार भी मुझे ये नहीं बोला गया, चाहे बाय अथॉरिटीज हो, चाहे बाय अक्यूज्ड के क्लाइंट्स अक्यूज हो, चाहे कंप्लेनेंट्स हो, अक्यूज और कंप्लेनेंट्स तो डायरेक्टली हम लोग के पास आते नहीं है, परंतु इंफॉर्मेशन सोसाइटीज की आ जाती हैं। देर आर वेरियस, क्योंकि हम लोग भी सोशल लोग हैं, सोसाइटी में रहते हैं, मार्केट भी जाते हैं, पता चल जाता है कि घटना क्या हुई थी। और मैंने ये पाया है कि वो जो मेरा फैक्चुअल असेसमेंट था, मैं 100% क्लेम नहीं करूंगा सर, आई वोंट क्लेम कि साहब मैं इतना परफेक्ट हूं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम आपसे ये कहेंगे कि मेरा सिक्स सेंस का फैक्चुअल असेसमेंट सही था। अल्टीमेटली वो लीगल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाया कि नहीं हो पाया, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो वैल्यू बेस में हम कई चीजें कह सकते हैं। मैं आपको जज के नजरिए से बात कर रहा हूं अभी। मैडम ओझा ने एक एग्जाम्पल दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था एज एन एडवोकेट के रूप में जस्टिस क्या होता है टुवर्ड्स योर क्लाइंट। मैं उसको हल्का सा टच करूंगा, टच इसलिए करूंगा क्योंकि मैं भी एडवोकेट रहा हूं, आई हैड प्रैक्टिस फॉर 26 लॉन्ग ईयर्स, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बोथ दी साइड। सो एज एन एडवोकेट भी जो मैं आपसे बात करूंगा, दैट विल नॉट बी अ थ्योरेटिकल, इट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। एज एन एडवोकेट जब आप किसी की ब्रीफ एक्सेप्ट करते हैं, देन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू से दैट द ऑफेंस विच वॉज कमिटेड और ही हैज क्रिएटेड द फॉल्स विल टू इन ऑर्डर टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ हिज ब्रदर, तो मैं तो इसको जानबूझ के इसका केस हारूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। कई बार होगा जो लीगल फील्ड में है, दे मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑन वेरियस ओकेजन वेयर इट वॉज फाउंड दैट द डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम द राइट इन द प्रॉपर्टीज वर इन फैक्ट फोर्ज्ड, बनाए गए थे। परंतु जब एक एडवोकेट उसका ब्रीफ एक्सेप्ट कर लेता है, ही हैज नो मॉरल ड्यूटी टू से कि साहब ये तुमने फर्जी कागज बनाया है इसलिए तो मैं तेरा केस जानबूझ के हारूंगा। वो ये कह सकता है ये तेरा केस फर्जी है, मैं तेरा केस लड़ नहीं सकता, पर वो मैं जानबूझ के हारूंगा वो नहीं कह सकता। एंड दैट वॉज द ग्लेरिंग एग्जाम्पल विच हैज बिन गिवन बाय बहन जी ओझा के, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को अपनी वाइफ की डेथ की भी इंफॉर्मेशन आई, तो उनके पास दो धर्म संकट थे, एक अपने जीवन साथी को खोने का और एक दूसरा संकट था कि बाकी 46 लोगों की जीवन बचाने का। उन्होंने तय किया जिसको मैं खो चुका हूं उसको वापस नहीं पा पाऊंगा, अभी नहीं तो आधे घंटे के बाद चला जाऊंगा, परंतु ये जो 46 जिंदगियां हैं अगर मैंने इनको बचाने का प्रयास छोड़ दिया तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सो दैट इज द वैल्यू विच इज टू बी फॉलोड बाय द लॉयर, बट सो फार एज द वैल्यू बाय द जज इज कंसर्न, ही शुड बी इम्पार्शियल, ही शुड बी अबव ऑल। अब मैं वापस आना चाहता हूं ओझा बहन जी के, पीएन भगवती साहब के एक्सपीरियंस पे, या उनका एक रिमोर्स था कि इमरजेंसी के दिन के समय एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक जजमेंट पे, जहां पे जस्टिस खन्ना, जिनके अभी बेटे संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना साहब सीजीआई थे, उन्होंने एक डिसेंट व्यू दिया था। माय ब्रदर जस्टिस नायक my esteemed colleague, Mr. Acharya, must be knowing the loss which was suffered by Justice Khanna. I would not say anything in public, but I just want to say one thing. Justice Khanna knew that he may suffer loss, but he took the correct path. Why I am saying so, correct path? Recently, Justice Chandrachud has overturned or set aside that judgment. DM Jabalpur versus Shivakant Shukla. Uska ek chota sa main aapko bata deta hoon ki question ye tha ki emergency ke dauran fundamental rights suspend ho jate hain ki nahi ho jate hain. And whether the life and liberty of a person can be curtailed without following any procedure of law or not. That was the question. Pehle ye hold hua tha ki wo bhi curtail ho jayenge. Now it has been overturned. But values ये होते हैं कि I may suffer whatever the consequences may be, but I will listen to my conscience. These are the values which are to be followed by the judge. He should not be concerned about the fallouts of that view. If he is satisfied that yes, my conscience says that this should be the view, first of all he should stick to it. परंतु जब ये प्रश्न आज खड़ा हो गया है कि value-based justice है, तो मैंने ये कहा था कि प्रश्न शायद आज के माहौल में चिंतनीय हो गया है कि जब समाज ये सोचने लगा है कि शायद कहीं वैल्यूज कम हो रही हैं, तो अगर वैसा सोच है तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि एक ओपिनियन बनाने से पहले एक उसका आध्यात्मिक पहलू, उसके कर्म का पहलू, उसके नतीजों का पहलू को भी ध्यान में रखें. पर अभी मद्रास हाई कोर्ट ने अभी कुछ कमेंट किया है, आई वोंट रिपीट इट, क्योंकि अभी वो हाईलाइटेड है, सोशल मीडिया पे भी है, पेपर्स में भी है, मेरे ख्याल से आज के न्यूज़पेपर में भी एक हाईलाइट है. आई वुड जस्ट कोट दैट, not quote in my mind, and I would request ki agar aap logon ne nahi dekha to aap log usko padhiye. It will not be proper for me to say anything because that statement appears to be a general statement. But if the people have started thinking that there should be a value based justice, to iska matlab hai kahin na kahin pe chahe 1% ho kuch kami aa rahi hai. इसको इस कमी को मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, डोंट टेक इट एज अदरवाइज, परंतु मैं आपसे सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं. एक लीटर सफेद पेंट के डब्बे में एक बूंद काला रंग का डाल दीजिए तो वो सफेदी वैसी सफेदी रहेगी नहीं. तो किसी भी इशू को आउटराइटली रिजेक्ट करना मेरे लिए शायद बेमानी होगा, बट आई वुड कॉल अपॉन ऑल दोज पर्सन्स that once you have given the job to decide the fate of the people, then you should be above everything, above your likings, dislikings, whatever the extraneous considerations may be. क्योंकि आज तक हमने ये नहीं सुना कि भगवान अपने निर्णय में भेदभाव करता है. मैं एक अपने judicial officers के साथ कई बार कहता हूँ कि हम लोगों को बचपन से चित्रगुप्त महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि वो आपके कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे हैं और उसका आंसर आपको और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा. तो मैं अपने हर जुडिशियल ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चित्रगुप्त जी की बात वाली बात को जरा सभी सच मानते हैं तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपके हर किए गए कर्म का जवाब आपको बाद में देना होगा. जैसे हर इंसान को देना है वैसे हमें भी देना है. अगर भगवान ने आपसे पूछ लिया कि आपको तो कल दी थी, आप समझ क्यों नहीं पाए, तो शायद हम आंखों में आंखें डाल करके बात कर लेंगे कि साहब इतने परफेक्ट होते तो हम आपकी जगह पे होते. परंतु अगर उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया कि आपको मालूम था कि ये निवाला एक आथा आपने जानबूझ के किसी इस कारण से ये निवाला निकाल के ए के मुंह से निकाल के बी के मुंह में डाला है, तब आप क्या जवाब दोगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये वैल्यू बेस्ड जस्टिस को बहुत छोटे अंदाज में मैंने बताने की कोशिश की है, और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सो फार एज दिस एस्पेक्ट इज कंसर्न, हम लोग अपने लिए अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को इस बात को मोटिवेट करते हैं, मत डरिए किसी से। मत डरिए किसी का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप को दादागिरी समझिए। मत डरिए किसी से का मतलब ये होता है आप किससे डर रहे हैं, एक किसी और स्थूल शरीर से डर रहे हैं, अरे वो फलाना वो मेरा नुकसान कर देगा। तो अगर ऐसे डर रहे हैं तो याद रखिए वो इंसान भी उसी अल्टीमेट फोर्स से गवर्न हो रहा है जिस फोर्स से आप गवर्न हो रहे हैं। डरना आपको फोर्स से चाहिए, डरते आप माध्यम से हैं। मैं कई बार मजाक में बोलता हूं, मैं कहता हूं कि हम इतने बुरे तो नहीं हैं कि हमारा संहार करने के लिए भगवान को खूब अवतार लेना पड़ेगा, परंतु हम इतने अच्छे भी नहीं है कि हमारे पास किसी भी कर्म का दंड भुगतने लायक हमारा पास अकाउंट ही ना हो, ऐसे भी नहीं है। परंतु जो भी गलतियां हमसे हुई हैं जाने या अनजाने, उसका दंड भगवान किसी के माध्यम से ही तो आपको देगा। हो सकता है कि आपके सीनियर आपकी ACR बिगाड़ दें, बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है कि साहब मैंने ऐसा कर दिया तो इन्होंने बिगाड़ दी, परंतु वो माध्यम है, वो परमपिता शक्ति नहीं है। अगर आप कहते हैं कि कोई इंसान मेरा नुकसान कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ये उसको इतना ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो सुप्रीम शक्ति के ऊपर जाके कह रहे हैं कि उसकी इच्छा के बगैर भी ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपको आप उस शक्ति के इच्छा के बगैर नुकसान नहीं पहुंचाता है। मेरा ये मानना है कि जो आपको फायदा पहुंचाता है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है, ये आपके मन की सोच है, वो सिर्फ माध्यम है, और जो माध्यम होता है तो उसके लिए कोई भी मन के अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए। बात अभी उठी थी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए, मैं उसी तरफ जा रहा था। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपके बाल्यकाल में स्कूल में एक बच्चे ने आपकी खूब पिटाई की थी, आपका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था और आपको आज तक याद है कि फलाने लड़के ने मेरी पिटाई की थी, और अचानक आपको 25 साल बाद 30 साल बाद कहीं दूर जाता हुआ दिख जाए तो आपके मन में थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है, ये वही आदमी है जिसने मेरा साथ ऐसा किया था। परंतु उसी क्लास के वो बच्चे जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी वो सामने से निकल जाए तो हो सकता है पहचान भी ना पाओ। अब इसके पीछे कारण क्या है? जिससे आपको गुस्सा है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, उसको अपने दिल में 25 साल के बाद भी जगह देके रखे हुई है वो, और जिससे आपको कोई गुस्सा नहीं है, जिससे आपका चाहे लगाव हो या ना हो परंतु आप बिल्कुल इंडिफरेंट हो, वो आपके दिमाग से जा चुका है। ऐसा क्यों? क्या हम रोज घर की सफाई नहीं करते? क्या हम कूड़ा उठा के बाहर नहीं फेंकते? या हम कूड़ा ही को इकट्ठा करके घर के अंदर फिर से रख देते हैं कि तू फैलता रहे? तो जिससे हमें लगाव नहीं है उसको हम दिल में रख के बैठते हैं, ये नेगेटिविटी है, और सुबह शाम उसका बुरा सोचते हैं। उसका बुरा होगा कि नहीं होगा, यू आर नॉट एन अथॉरिटी, पर आपने अपनी सोच नेगेटिव कर दी, ये बात पक्की है। और जब आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आप समझ लीजिए एक चश्मा आपने आंखों पे डाल लिया और आप जो भी देखोगे उसी नजरिए से देखते रहोगे। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो स्थूल शरीर है जो कि मेरा है पर मैं नहीं हूं, हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी है, मैं को देनी हूं कि मेरे को देनी है? इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस ऑडिटोरियम में उपस्थित किसी भी उपस्थित श्रद्धालु जन को इस बारे में बात करने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि इस ऑडिटोरियम, इस धारा के जो मूल विचार आत्मा है, शरीर नहीं है। तो जहां पे आपको आत्मा और आपके शरीर में भेद बताते हुए आत्मा की इम्पोर्टेंस और आत्मा के कर्म और आत्मा को किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा रिफाइन करना है, ये जहां बेसिक टीचिंग हो वहां पे मुझे कुछ भी बोलना, सूरज के सामने एक दिया जलाने का एक प्रयास होगा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी हम लोगों को समझाया गया कि आत्मा और शरीर अलग है, शरीर के रहते हुए आत्मा ने शरीर के माध्यम से जो भी कर्म कर लिए उसका भी फल आत्मा को झेलना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा आप प्योर लाइफ जिएंगे, आप वो शाश्वत लाइट को और रिफाइन करते चले जाएंगे, शायद इसी कारण से ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। मैं एक पंजाब में एक एनवायरमेंटल रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा था। आज एक अच्छी बात है कि चीफ गेस्ट को सबसे पहले बुला लिया, नहीं तो आमतौर के ऊपर सबसे आखिरी में बुलाया जाता है, और आखिरी में आने में होता यह है कि आदेश होता तो सो रहे होते हैं। तो मैंने एक चीज बोली कि मैंने आइए, अब वो दिन आ गया है कि जब हम जानवर बन जाएं। ये व्यक्ति जानवर प्रवृत्ति का है, उसको लिए बोला जाता है कि जिसको हम बहुत ही दुष्ट कहते हैं, और मंच से बोला जा रहा है कि आइए हम जानवर बन जाएं। तो जितने सो रहे थे सब तो उठ के चौंक के बैठ गए कि ये क्या हो गया भाई। तब मैंने उनको समझाया, जिनके घर में भी पेट हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आज जितने भी जीव जंतु हैं, आप चाहे कोई भी नाम ले लीजिए, पंछी ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं लिविंग क्रिएचर कहूंगा, उनमें सारी की सारी फीलिंग्स वही हैं जो हम में भी हैं, परंतु उनकी फीलिंग्स प्योरेस्ट फॉर्म में हैं, हमारी आज डाइल्यूटेड है। जिनके घर में भी पेट है, या आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि जब मालिक का घर आने का समय होता है तो उसका डॉग दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, और जैसे ही उसकी सुगंध आती तब वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है और आता है तो लिपट जाता है। बदले में डॉग क्या चाहता है? कुछ नहीं, खाना, थोड़ा सा प्यार भरा उसको सहला दीजिए, उसको खाना उसको चाहिए। सर, आपकी अपनी जिंदगी नौछावर कर देता है आपके ऊपर, आपसे कुछ मांगता नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक फार्म हाउस है, उसने 5 या 6 गायें रखी हुई हैं। वो मेरे से कहता है कि साहब मैं संडे के संडे जाता हूं, जब संडे को जाता हूं उस दिन वो सबसे ज्यादा दूध देती हैं। आगे पीछे 6 दिन उनका दूध कम होता है, मैं जब जाता हूं तो उस दिन उनका 1 लीटर ही सही पर ज्यादा दूध आता है। क्या ये उस लिविंग क्रिएचर के अंदर की प्योरेस्ट फॉर्म का लव अफेक्शन नहीं है तो और क्या है? आइए ये सोचिए कि क्या वो प्योरेस्ट फॉर्म की फीलिंग्स हमारे में आज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो मेरा ये कहना कि आइए हमें थोड़ी सी जानवरी प्रवृत्ति, नेगेटिव वाली नहीं, पॉजिटिव वाली पे विचार करने का शायद समय है कि नहीं, ये आप लोगों के ऊपर प्रश्न छोड़ता हूं। फिर से इस बात के लिए भी फिर से माफी मांग लूंगा कि अगर आपको ये बात गलत लगेगी, तो शुरुआत ही मैंने वहीं से की है। पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म में जीवन जिएंगे उसका दूसरा नाम पॉजिटिविटी है, और जहां आपके जीवन में इम्प्योरिटी आ जाएगी उसका नाम नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी से दूसरे को नुकसान हो या ना हो मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि आपके जीवन में उल्लास नहीं रहेगा, आपके जीवन में उस दूसरे व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए यही सोचते रह जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैं फिर से इस विषय से भटक रहा हूं। मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं जानबूझ के उसको थोड़ा सा एनलार्ज किया। वैल्यूज क्या होती हैं? आपकी अंदर की भावनाएं, और भावनाएं चाहे वो जज की हो, चाहे वो एडवोकेट की हो, चाहे वो किसी एक व्यक्ति विशेष की हो, एक ही जैसी होती हैं। और इस आध्यात्मिक धरा में जहां पे हो हम और आप अपना व्यक्तिगत जीवन आध्यात्मिक तौर पे उसको ऊंचाइयों पे ले जाने के प्रयास पे इकट्ठे हैं, या आप लोग जिस मार्ग पे चल रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि वैल्यू शब्द को थोड़ा सा इनलार्ज करके मैंने अपने विषय से भटका नहीं हूं, क्योंकि वैल्यू वो जस्टिस वो नहीं होता है कि जो न्याय या जो निर्णय कोर्ट से होता है। जस्टिस वो भी होता है जो हम और आप रोज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये ग्वालियर का इंसिडेंट है, मनगढ़ंत बात नहीं है, पेपर में छपी थी, आई विटनेस नहीं हूं परंतु पेपर में छपी थी, पुलिस वालों ने उस व्यक्ति का सम्मान किया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक ऑटो में एक महिला अपना पर्स छोड़ गई जिसमें कि कुछ जेवर वगैरह भी थे। ऑटो ड्राइवर की माली हालत क्या होती होगी सर, आप लोग समझ सकते हैं। अब वो भी आगे चला गया, जब उसने आगे गया तो उसने देखा कि इसमें पर्स रखा हुआ है। अब वापस आया 2-4 किलोमीटर पीछे तो वो महिला जा चुकी थी, महिला को भी ध्यान नहीं था मेरा पर्स छूट गया है। वो सीधा थाने गया और थाने में जाके वो पर्स जमा किया और बताया कि इस जगह के ऊपर मैंने उस पैसेंजर को उतारा था, ये वहीं पे छूटा है। पुलिस वालों ने खोला, उसके अंदर पैसे भी थे, जेवर भी था। वो ऑटो वाला इससे पहले कि वो थाने से बाहर जाता, वो महिला बदहवास स्थिति में थाने में आई कि सर वो मेरा पर्स छोड़ गया है। तो वो जहां पर्स उसने टेबल पे देखा वो रोने लगी। क्या ये जस्टिस कोर्ट में दिए गए निर्णय है या आपके जीवन में किया गया एक कार्य है? कोर्ट का निर्णय तब आता है जब वो ऑटो वाला वो पर्स लेके चला जाता है, वो कहता है ये मेरा पर्स है, और फिर मुकदमा चलता है, और फिर हम निर्णय देते हैं कि नहीं ये पर्स तो, ये जेवर तो, वो पैसा तो उस महिला का है जो उसमें भूल गई थी। क्या जो ऑटो वाले ने किया था वो निर्णय नहीं था? क्या वो जस्टिस नहीं था? क्या जस्टिस सिर्फ कोर्ट के चार दीवारी में ही कन्फाइन है या हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए? इसलिए मैंने थोड़ा सा विषय से भटक के उसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं क्यों भटका हूं। हम जीवन में रोज जो भी काम करते हैं, अगर हम मैं एक लीगल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा था तो हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो एनफोर्सेबल हैं पर फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। हमने कहा था आज समय आ गया है, आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज को अपना कर्म माने, फंडामेंटल राइट्स तो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। उस ऑटो वाले ने जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी की, चाहे जो उसने आप उसको मॉरलिटी का नाम लीजिए, चाहे उसकी ड्यूटी का नाम लीजिए, चाहे उसको ईमानदारी का नाम लीजिए, क्या उसने जस्टिस नहीं किया? अगर उसने जस्टिस किया है तो हम हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। आज मेरे हाथ में एसीआर हैं, मुझे लगता है कि ये आदमी यार ये अच्छे से मेरे को नमस्कार नहीं करता, मैं उसकी एसीआर बिगाड़ देता हूं, तो क्या ये जस्टिस है? हमारी जिंदगी में जस्टिस हमारे हर कदम के ऊपर हम उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन इस बात के लिए नहीं है कि आप अपने जीवन में उस तरीके से मोल्ड कीजिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में अच्छे कर्म नहीं होते तो आप लोग यहां पर नहीं आते, आप इस संस्था विचारधारा को आत्मसात करने का प्रयास नहीं करते। परंतु आपसे निवेदन ये जरूर कह सकता हूं कि यहां से जो भी आप लेके जाते हैं उसको फैलाइए, समाज में फैलाइए, ताकि जो काम 20 साल के बाद कोर्ट में होना है वो काम एक भाई फर्जी विल बना के दूसरे भाई की संपत्ति को हड़पने का प्रयास ही बंद कर दे। मैं वैसे काफी ज्यादा समय ले चुका हूं आप सबका, परंतु मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं उसको एनलार्ज करना चाहिए, थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने कोशिश की। कोई बात जब भावनात्मक रूप से कही जाती है तो कुछ कड़वे शब्द भी निकल जाते हैं, तो अगर ऐसे कुछ जाने अनजाने कोई शब्द निकले हों तो आप सबसे पुनः ये निवेदन करता हूं कि जैसे शुरू में मैंने कहा था कि चूंकि अध्यात्म की तरफ से हमारा अनुभव नगण्य की श्रेणी में ही आता है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और आप सब ने मुझे यहां बुलाया, शायद मेरे कर्म रहे होंगे कि जो मैं आज आया यहां पे। आप सबसे मैं एक चीज दो मिनट में खत्म करूंगा, मैं आपसे कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मुझे पिछले साल भी आना था, कुछ परिस्थितियां बनी नहीं आ पाया, आज भी आना था। डॉक्टर ब्रजेश सिंघई साहब ये जानते हैं कि परसों मैंने इनको फोन करके बोला था भाई ये कारण है मैं नहीं चल पाऊंगा, परंतु फिर परिस्थितियां चेंज हुई, जो कारण था वो हटा, फिर मैंने इनको 10 मिनट बाद फोन किया मैं आ रहा हूं। जैसे श्रद्धा बहन ने कहा कि फ्लाइट काफी लेट हुई, सब कुछ था, पर कर्म थे जिन्होंने आज मुझे यहां लेके आना था। आज सबके साथ सम्मुख खड़ा हूं, आप ही के जैसा हूं, यहां पे मुझे मौका दिया गया तो इसका मतलब नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानवान हूं, शायद आपसे सीखना ही है, आप सबकी संगत करने में आया हूं। धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल जस्टिस अहलूवालिया जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। आपने भले ही कहा कि आपको आध्यात्मिकता कुछ बात मालूम नहीं है, लेकिन हमने आपके विचारों से जाना है कि आप में आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। पुनः एक बार धन्यवाद, हम आपको सुनना चाहते थे लेकिन समय भी और हो रहा है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुदेश दीदी जी को, राज्योगिनी सुदेश दीदी जी, आप हमें अपने आशीर्वचन देंगे। और आप इस कैंपस की सीनियर डायरेक्टर है और ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन की जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आप संयुक्त तो मुख्य प्रशासिका है, और बाकी हम दीदी जी को शाम को सुनेंगे, इसलिए मैं भी एक शॉर्ट परिचय दिया है। एक शब्द दीदी के लिए बोलना चाहूंगी, आंखों में चमक, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान, आपके आने से ही बढ़ा है दीदी जी हमारा मान सम्मान, आपके आने से बढ़ा है हमारा मान सम्मान। हम रात को जब दीदी जी का सेशन 8:30 से 9:30 भी है तब हम दीदी जी का पूरा बायोडाटा सुनेंगे, बहुत लंबा और बहुत अच्छा है। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। मंच पर विराजमान मेरे भाई और बहनों, गेस्ट नहीं कह रही हूं क्योंकि आप गेस्ट नहीं है, आप अपने परिवार में आए हैं, अपने घर में आए हैं, प्रभु के दरबार में आए हैं, इसीलिए अपने ही भाइयों को गेस्ट क्यों बनाऊं? और जबकि बच्चे तो मालिक होते हैं, बालक तो मालक होते हैं, हम सब प्रभु की संतान हैं, इसलिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। हीरो के हार हैं ये, जो भी बोल रहे हैं ये सबके लिए उपहार है, समझे हुए, जो कि दिल से बोले, दिल से जो भी बोला है वो हमेशा सुनने वालों के लिए और सुनाने वालों का भी हृदय खुश होता है, समझ बढ़ती है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई बहन जो चैतन्य सितारे और इतना समय बैठे हैं, मैंने देखा एकाग्र होकर के बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, जिस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, अपने विचार तो देंगे ही सही, परंतु विचार सुनने के लिए भी स्नेह और सम्मान से सुन रहे हैं। आज का टॉपिक ही सिद्ध करता है, जब लाओ शब्द कहते हैं मतलब क्या है। आज संसार में हम सबको पता है लॉलेसनेस है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, उसका कारण क्या है? कोई न कोई विकार है, चाहे कोई भी विकार हो, बिगड़ी हुई बात को विकृत कहते हैं, विकृत को हिंदी भाषा में विकार कहते हैं, बिगाड़ कहते हैं, कुछ बिगड़ गया, कुछ रोंग हो गया है, फिर कहेंगे मैंने तो केस इसलिए किया, मेरा अधिकार है, अनाधिकार पर या तो कारण क्या है? चाहिए 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 मुझे, तो वृत्ति क्या है? लोभ की है। जितने भी केस होते हैं, आपने कोई ऐसा देखा जिसमें सचमुच वैल्यू भरी हुई हो? लॉलेसनेस है एक शब्दों में। अब क्योंकि अंधकार है, कहते हैं ना दिन दहाड़े अधिकार है, दिन है रोशनी है पर घोर अंधेर है, किस चीज का? आत्मा जो देखने वाली है उसने खाली काली काला चश्मा नहीं पहना है, नैनहीन हो गया, दृष्टि नहीं रही है वो उस साक्षी होकर के देखने की। तो कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, अब ऊपर वाला तो निराकार है, समझो। कहने का मतलब क्या, अहमदाबाद से उतरते हैं ना तो पहले ही जैसे शहर में घुसते हैं ऊपर वाला देख रहा है, अभी ऊपर वाला देख रहा है क्या मतलब है? जो इन न्यारा है, आप नीचे से कोई देखेंगे छोटी चीज तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, ऊपर से देखेंगे तो बड़ी चीज छोटी दिखाई देगी। दूसरा मतलब है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप साक्षी दृष्ट हैं। इसीलिए वकील अब क्यों और न्याय करने वाला अब आर्ग्यूमेंट क्यों करना पड़ता है? जरूर कहां पर कुछ ऐसी बात है जिसमें सिद्ध करना पड़ता है, और ना केवल सिद्ध करना पड़ता है, जिद करना पड़ता है। सिद्ध और जिद से कोई भी चीज सिद्ध होती नहीं है, सत्य सत्य ही है। और रक्षा भी, मुझे अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, और कुछ नहीं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, भ्रष्टाचार है, प्रोटेक्शन चाहिए। परंतु सारा संसार दुखी है, जो घर सुखी थे आज कोई घर ऐसा बचा होगा भाग्यशाली सभ्य जिसको कोई इस अपनी एक दो पीढ़ी में के बीच में अभी ऐसी परिस्थिति का अनुभव ना हुआ हो, कॉमन बात हो गई है, जैसे कि एक खेल हो गए, बस उठा के कोर्ट में केस कर देने। अब क्या है, वास्तव में देखा जाए तो लॉ तब बनाना पड़ता है जब लॉलेसनेस है। तो लॉ एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब है अवेकनिंग और अवेयरनेस कि क्या हो रहा है। तभी तो जज को, वकील जी को, वकील जी को, जज साहब को, यानी वो अवेयरनेस चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। दोनों वकीलों की सुननी पड़ती है, परंतु विजडम काम करती है, इंटेलिजेंट नहीं है जरूरी। हाँ, ज्ञान चाहिए, नहीं तो क्लेवर होने से, बड़ा इंटेलिजेंट होने से कैंची का काम कर देता है और सुई विजडम का काम करती है। सुई जो है ना, वो पुराने जमाने में लोग टोपी पर लगाते थे, बहुत करके दर्जी टोपी पहनते थे, कैंची पैर के नीचे रखते थे, जहां मन मुटाव है, कटाव है, भेदभाव है, ट्रस्ट की कमी है, स्नेह की कमी है, या फिर लोभ है, मोह है, इच्छा है, अहंकार है, पार्शियलिटी है, यानी कोई ना कोई अवगुण जरूर है, मतभेद है, तो ये सब बातें इसी कारण है। जब कहा जाता है भारत तो विश्व का गुरु था और अब भी गुरु है, परंतु गुरु का मतलब ही है अंधेरे से को निकाल के रोशनी देने वाला, और आपका नाम तो है ही सतगुरु पाल, हमारे मीठे भाई का नाम भी अच्छा है बहुत। तो कहने का मतलब लाइट मिलती है एक पिता परमात्मा से, तो कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। जहाँ धर्म है, स्वधर्म है, धर्म का मतलब ये नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या ईसाई हूँ, परमात्मा का धर्म कौन सा है? जो हमारे सच्चे साहब का, परम पिता का धर्म है, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा धर्म भी वही होगा, परमात्मा के पास। और नहीं, उसके पास तो न्याय है, तो उसके बच्चों के पास भी तो न्यूट्रल स्टेज होगी ना। तो इसीलिए वो न्यूट्रल कौन रह सकता है? नेचुरल स्टेज हमारी कैसे हो सकती है? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करते हैं, स्वधर्म में स्थित होते हैं, तो अपने आप ही रक्षा होती है। उपकार करते हैं तो दुआएं अपने आप मिलती हैं, और जब भी अपराध करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ कहां कमी या कमजोरी होती है। चार दिन की कोई बात ठीक हो जाएगी, पर मानो नियम छोटा सा बना हुआ है कि भाई आपको बस में टिकट देनी जरूर है, लेनी है। चलो आपने 15 दिन बचा लिया, 16वें दिन टिकट कलेक्टर आएगा, 6 महीने की सजा, मतलब पैसा देना पड़ेगा। कोई उल्टा काम कर लिया तो इसमें कर्म फिल, कर्म मैं कैसा कर रहा हूं, उसमें धर्म कितना है, स्वधर्म है क्या, श्रेष्ठ कर्म है क्या, इन बातों को जब आत्मा समझती है तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं भाई, जब ऐसी दुनिया बन जाएगी जो सब कोई स्वधर्म में टिकेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, तो आपका जॉब छूट जाएगा, आप सबको न जज रहेंगे न वकील रहेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब सुखी होंगे ना। अब भी करना पड़ता है जॉब, वहां तो इस जॉब की जरूरत नहीं, इसलिए और पालना होएगी। क्यों? इसमें तो हरी भरी धरती सुख धाम है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी है, दुख है ही नहीं। तो मैं तो दो शब्द जो बोलने हैं कि भाई गुड विशेष या कहूं प्रेरणा देना या जो भी लिखा है ब्लेसिंग्स देना, लंबा भाषण तो नहीं करना है, पर मेरा कहने का मतलब यही है, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना, सब कारण भी सुना। परमपिता परमात्मा फिर निवारण करते हैं, उलझी हुई बात को सहज कर देते हैं। आज क्योंकि ज्ञान की कमी है, अज्ञानता के कारण ही, अज्ञानता किस बात की, पढ़े लिखे तो हम सब बहुत हैं, परंतु ज्ञान की कमी है। वास्तव में जब आत्मा को नॉलेज इज लाइट, लाइट मिलती है तो दिखाई पड़ता है कि क्या चीज कहाँ पर है, नहीं तो अनाधिकार के पीछे भागते हैं, वो परछाई की तरह है, जितना जितना उसके पीछे भागेंगे वो आपके पीछे पीछे आएगी, अगर लाइट को सामने रखेंगे। लाइट को पीछ किया, परछाई पीछे पीछे दौड़ेगी, इसीलिए लाइट को सामने रखेंगे तो अपनी अवेयरनेस आएगी, और उस अवेयरनेस से, उस अवेकनिंग से विजडम आएगी। हर चीज को समझ के पालन करना है, कोई झगड़े की बात ही नहीं है। मैं, मेरी हार हुई तेरी जीत हुई, रे हार मानी झगड़ा छूटा, पर हार किस बात की, वो जो अहंकार से अपनी हार मानी, लोभ से अपनी हार मानी, लोभ वाले ने जीता दूसरे ने हार। परंतु वास्तव में भगवान कहते हैं हार्मनी, एकता, विचारों में एकता तब आएगी, मत भेद है तभी ये सब दुख शांति है, और वो एकता तब आएगी, आप प्रभु के गले के हार बन जाएंगे जब ये स्वीकार कर लेंगे सच्चाई क्या है। सच्चाई, आप सच्चिदानंद की संतान है, सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है, आप सत्स्वरूप आत्मा है। तो वो आध्यात्मिकता क्या है, वो तो आप ये जो तीन दिन यहाँ पर हैं तो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। पर मेरी यही शुभ भावना है कि आप इस ज्ञान सरोवर में आए हैं, सरोवर में हंस होली चुगते हैं, सरोवर माना जहाँ गरीब न स्नान करता है, महिमा है शास्त्रों में, गरीब शाहूकार बन जाता है, बुढ़ा बालक बन जाता है, बीमार हेल्दी बन जाता है, ये मतलब परिवर्तन आ जाता है, न्यूनेस आ जाती है, आत्मा के भंडारे भरपूर हो जाते हैं, कालकंटक सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए जितना आप थोड़ा अध्यात्म को समझेंगे तो आध्यात्मिकता ही वास्तव में आत्मा को बंधन से मुक्त करती है, स्वधर्म से अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करते हैं तो विकर्म या कोई विकार या कोई भी चीज रोंग जा नहीं सकती। इसीलिए इसका विस्तार तो आप जब सवेरे का क्लास होता है या अलग अलग सेशन होंगे उसमें आपको मिलेगा। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ से आए भरपूर होकर के जाएंगे। कोई भी संशय है बड़े शौक से पूछिए, क्वेश्चन पूछना मन है नहीं है, कुछ रखना है अगर मन की कोई संशय है तो, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये परिवार है और स्कूल भी है, तो उसमें अंधश्रद्धा नहीं होती, हाँ जी हाँ जी करने की बात नहीं है, सत्वचन ऐसे ही कहने की बात नहीं है। आत्मा सत्य स्वरूप में टिकती है तो सत्य की जीत होती है, इसीलिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। प्रकृति के तत्व, जब सूर्य सत्य है तो सिद्ध नहीं करता मैं गर्मी लेके आता हूँ, सच्चा गुलाब है सिद्ध नहीं करता, मैं खुशबू देता हूँ। तो जब सत्यता है तो न आर्ग्यूमेंट है, न सिद्ध करने की जरूरत है, न जिद करने की जरूरत है। और जब ऐसी स्थिति में आत्मा रहती है तो वो प्रसिद्ध हो जाती है, उनकी महिमा होती है, उनके हम गुणगान करते हैं और खुद को रियलाइज करते हैं कि मैं मूरख कलकामी, मैं अवगुण हारे में कोई गुण नहीं। फिर तरस मानते, फिर तरस पड़ा, भगवान आप क्षमा करो। तो क्षमा कर लेने की भी जरूरत नहीं है, बाप तो शिक्षा दे करके बच्चे को बचा लेते हैं। इसीलिए लॉ क्या है वास्तव में, आध्यात्मिकता क्या है, उसका पूरे समझ आप लेके जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और भावना है। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदेश दीदी जी, आपने ज्ञान के सागर को गागर में समा लिया और हमें प्रेरणादायी विचार हमारे सामने व्यक्त किए।